गौरिताय की जय, व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जमुना मई की जय, जय गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ कि आप लोग इस विशेष सेमिनार के लिए, प्रवचन के लिए यहाँ पर आए। वैसे कभी भी जो वक्ता होता है वो अपने कथा का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, लेकिन इस कथा के लिए हमने किया क्योंकि ये जमुना जी के लिए है। तो इस प्रकार से आज का ये जो हमारा भाषण है वो श्री जमुना जी के लिए समर्पित है, और जमुना जी के बारे में जानने के लिए है, जानने के बाद उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए है, जिनके हृदय में पहले से प्रेम है उसकी वृद्धि करने के लिए है, जिनको जानकारी नहीं है उनके हृदय में प्रेम की ज्योति और चिंगारी जगा जलाने के लिए है। हर व्यक्ति को इस कथा के अंत में यहां से जाने के पहले जमुना जी के बारे में या तो प्रेम बढ़ना चाहिए या निर्माण होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि हमारी कथा सफल हो गई भगवान के लिए, उनके सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए। क्योंकि श्री जमुना देवी का जो वर्णन किया गया है शास्त्र में, बहुत सारे अष्टक है, यमुना अष्टक है, बहुत सारे सुंदर सुंदर संस्कृत में उच्च प्रति के काव्य जमुना जी पर रचे गए हैं, क्योंकि जमुना जी वास्तविक काव्यमय है। जैसा उनका स्वरूप है जो वर्णन किया गया है, जो उसका मूलभूत स्वरूप था जब भगवान कृष्ण थे, वो सब दिव्य है, अलौकिक है, पारलौकिक है, भगवान के धाम के जैसा दिव्य है। और हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारी वो धरोहर है, हमारे जीवन की धरोहर है, भगवान के धाम की धरोहर है। हाँ, इसलिए हम ये कोशिश करने जा रहे हैं। हम तो बहुत ही तुच्छ जीव हैं और अणु मात्र हैं, और जितना भगवान स्वयं जमुना जी के बारे में बोल सकते हैं उतना कोई भी जीव नहीं बोल सकता है। लेकिन फिर भी अगर जीव प्रामाणिकता से भगवान के प्रिय वस्तु का गुणगान करने का प्रयास करे तो भगवान उसको शक्ति दे सकते हैं, उस पर शक्ति आवेशित कर सकते हैं और वांछित परिणाम जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो किसको क्या शक्ति दे सकते नहीं है, उनकी इच्छा है तो वो तुच्छ जीव को, तुच्छ से तुच्छ जीव को भी अनंत शक्ति प्रदान कर सकते हैं और उसके हाथों से दिव्य दिव्य काम कर सकते हैं। या उसे भी पता चलेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिव्य शक्ति जो करंट लगाया है उसके द्वारा हो रहा है। तो ये भावना से हम बोलेंगे, ये भावना से आपको सुनने के भी हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग भगवान के अंश हैं और जो भगवान की इच्छा है वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये भगवान की भी ऐसी इच्छा है कि उनकी इच्छा हमारी इच्छा होनी चाहिए और हमारी इच्छा उनकी इच्छा होनी चाहिए। तब वह इच्छा मत यतने को रही, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि तुम्हारे लिए केवल मैं प्रयत्न करता रहूं, तो जो भी जतन है, जो भी यत्न है, जो प्रयत्न है, जो मैं कष्ट करने वाला हूं वो केवल आपके लिए हो। यही जीवन की परिपूर्णता है और इसी में हमारे जीवन की धन्यता है। तो श्री जमुना देवी के बारे में सनत कुमार संहिता में वर्णन आता है कि जमुना देवी प्रकट कैसे हुई। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ ललिता विशाखा आदि अनंत सखियों के साथ श्रमकेली करते हैं, यानी कि श्रमकेली का मतलब क्या है, जब कोई दिव्य लीला करते हैं तो श्रम भी होता है ना, लेकिन वो श्रम भौतिक नहीं होता है, श्रम आध्यात्मिक होता है। उस श्रम से शक्ति बढ़ती है, आदमी क्षीण नहीं होता है। तो ये जब श्रम केली करते हैं यानी कि लीला करते, केली का मतलब है लीला, उस दिव्य लीला उनको करते हैं, तो सभी गोपियों के और भगवान के और राधा रानी के शरीर से दिव्य स्वेद निकलता है, जिसका विकृत स्वरूप जो है पसीना है इस दुनिया में, लेकिन वही शरीर से निकलने वाला जो द्रव्य है वो दिव्य द्रव्य है। उसके अंदर राधा रानी और कृष्ण भगवान को लगाए गए चंदन, अगुरु, कुमकुम और अन्य प्रकार के सुगंधी और रंग बिरंगी द्रव्य है उसके अंदर, जिसको भगवान से सुशोभित किया जाता है। भगवान को अलग अलग प्रकार के फूलों से, जो दिखने में भी बहुत विविधतामय है और नाक के लिए भी बहुत ही अलग अलग प्रकार के विविधतापूर्ण गंध उसके अंदर है, ऐसे अनंत पुष्पों की मालाओं से भगवान को सुशोभित किया गया है। तो जब ये स्वेद बिंदु उनके शरीर से निकलता है तो ये सभी लोगों की, सभी वस्तुओं की खुशबू और दिव्यता और महानता और अलौकिकता लेकर वो द्रव्य बिंदु निकलते हैं। तो उस द्रव्यों को गंध भी होता है अलग अलग प्रकार का, और रंग भी होता है, और बहुत सुंदर अनुभव भी होता है। इसी दिव्य जल को जब बहते हुए सखियों ने देखा तो उन्होंने राधा रानी और कृष्ण भगवान से कहा कि इसको एक नदी का रूप देना चाहिए, ये बहुत ही दिव्य है। तो तुरंत भगवान ने उसको नदी का रूप दिया और वो जमुना नदी वहां पर प्रकट हो गई, प्रवाहित हो गई। हाँ, हे केली प्रवाहिनी, ऐसा उसका वर्णन किया गया है कि वो साक्षात भगवान की लीलाओं को भी प्रवाहित करती है अन्य जीवों के लिए। उस लोक में, वैकुंठ लोकों में, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा लोक से पाताल लोक तक, सब जगह पर वो भगवान की दिव्य लीलाओं को प्रवाहित करती है गौरव के रूप में। फिर उसके बाद में और वर्णन ऐसा आता है कि राधा कृष्ण के हृदय में एक दूसरे के प्रति और अन्य गोपियों के प्रति और ब्रजवासियों के, गौलोकवासियों के प्रति जो दिव्य प्रेम है वो उनके हृदय से उमड़कर जब ओवरफ्लो होता है ना, बोलते हैं उछलता है, उमड़ता है, तो वो भी जमुना जी हैं। क्योंकि जब लीला होती है तो सभी अंगों से दिव्यता प्रकट होती है, ऐसा नहीं कि केवल चर्म से, त्वचा से दिव्य बिंदु निकलते हैं, हाँ, आंखों से और नेत्रों से के बाद में जिह्वा से, शरीर के अनेक अलग अलग कर्म इंद्रियों से, सब प्रकार के अवयवों से, जो कि भगवान का शरीर कैसा है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, हरेक अंग उनका परिपूर्ण है, हरेक अलग अंगों का काम कोई भी इंद्रिय पूरा कर सकता है, तो सभी उनकी इंद्रियों से दिव्यता प्रकट होती है, भाव प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, जीव के लिए करुणा प्रकट होती है, जीव के लिए आस्था प्रकट होती है। मराठी में कहते हैं जीवलग, यानी कि जीव के प्रति उनका जो लगाव है, प्रेम है, करुणा है, वो भी उससे प्रकट होती है। तो राधा कृष्ण के हृदय से उमड़ता हुआ ये प्रेम है, उछलता हुआ प्रेम है, हृदय के किनारों को छोड़कर वो बाहर प्रकट होता है और जमुना नदी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो यह यथावकाश, आप जानते हैं कि हर चार युगों का जो कल्प होता है, ऐसे जब चार युग होते हैं ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चार युगों से एक कल्प बनता है, उसको दिव्य युग कहते हैं। ऐसे 1000 दिव्य युग के बाद में जो 1000वां द्वापर युग आता है तब कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, हर द्वापर में नहीं होते। वो जब 1000 कल्प होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो कहा गया है कि ब्रह्मा जी की एक दिन में केवल एक बार आते हैं वो, 999 द्वापर में नहीं आते हैं, 1000वें द्वापर में आते हैं। तो समय हुआ तभी राधा रानी को भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, अभी पृथ्वी पर जाकर कृपा करने का समय आ गया है, तो आप हमारे संग चलो, सब देवताओं को हमने आदेश दे दिया है, वो अपने अपने अंशों को प्रकट करने वाले हैं। तो राधा रानी कहती है, यत्र वृंदावनो नास्ति यत्र यमुना नदी, ना यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मम न मनस सुखम, जहां पर श्री वृंदावन धाम नहीं है, जहां पर श्री यमुना जी नहीं है और जहां पर मेरे प्रिय गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहां पर मुझे मन के लिए जरा सा भी कर्ण भर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। न यत्र मनस सुखम, कदापि मुमकिन ही नहीं हो सकता है। यह श्लोक कहां दिया गया है? गर्ग संहिता में दिया है। इसका वर्णन आता है कैसे भगवान संवाद कर रहे हैं। भगवान बड़े ही प्रेम से राधा रानी से कहते हैं कि आपका मंतव्य जानकर मैंने पहले से ही श्री गौलोक वृंदावन का एक हिस्सा पृथ्वी तल पर भेज दिया है, जिसको अभी भौम वृंदावन के रूप में जाना जाएगा। जो भूमि पर विस्थापित है, स्थापित है, विस्थापित नहीं, स्थापित है, वो भौम भूमि के ऊपर भौम वृंदावन के रूप में प्रसिद्ध होगा और उसमें मैंने गौलोक धाम से श्री वृंदावन को पहले से प्रकट कर दिया है। श्री वृंदावन धाम और यमुना देवी और गोवर्धन, इसके बिना श्री ब्रज भूमि को परिपूर्णता नहीं है, सब अपूर्ण है, तो मैंने पहले से भेज दिया है। तब जाकर राधा रानी ने श्री वृंदावन में आने का, अवतार लेने का या अवतरित होने का निर्णय ले लिया है। ये उसका इतिहास है। तो आप जानते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो कोई निमित्त होता है ना, कभी प्रश्नी और सुतपा के रूप में है, कभी कश्यपा और अदिति के रूप में है। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई सुदर्शन महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच। तो निमित्त तो चाहिए माता पिता का, जैसे कृष्ण भगवान आए तो वसुदेव देवकी के रूप में आए, उसके पहले कश्यप और अदिति के रूप में आए, उनके गर्भ में वामन देव का जन्म हुआ, प्रश्नी और सुतपा के गर्भ में प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वैसे ही यमुना देवी का अवतरण होना है, निश्चय तो हो चुका है, अवतार होना है, तो सूर्य देव विवस्वान भगवान और उषा देवी का विवाह होता है और उषा देवी और सूर्य भगवान का जब संबंध होता है तो पहली बार उषा देवी सूर्य भगवान के तेज से बड़ी प्रभावित हो जाती है, यहां तक कि डर जाती है, विमोहित हो जाती है, संभ्रमित हो जाती है। तो सूर्य भगवान कहते हैं इस संबंध से जो बालक होगा, जो पुत्र होगा, उसके प्रति पूरा विश्व भयभीत होगा, उसका नाम होगा यमराज। तो यमराज का जन्म हुआ। चूंकि सुविश्वा देवी को भय हुआ था, उन्होंने कहा कि इसके बारे में सब विश्व भयभीत रहेगा। तो उषा देवी को अच्छा नहीं लगा, अरे मेरे पुत्र से पूरे जीव भयभीत क्यों रहे। दूसरी बार जब उनका संबंध हुआ तो उन्हें बड़े प्रेम से, बिना भय के, बिना संकोच के, बड़े प्रेम से सेवा किया। तो सूर्य भगवान ने कहा कि अभी जो पुत्री होगी वो नदी के रूप में होगी, वो देवी होगी लेकिन नदी के रूप में प्रकट होगी, देवी के रूप में भी होगी लेकिन जल के रूप में प्रधान उसका अस्तित्व होगा और उसके जल में जो स्नान करेगा वो मेरे पहले पुत्र के भय से मुक्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। कितना सुंदर कथा है, देखो आप कितनी आशादायक, कितनी होपफुल कथा है ये। सब जीवन हमारा जो है वो यमराज के, यमदूतों के भय से भयभीत है, मृत्यु आएगी क्या होगा सब डर भय वाले, लेकिन उपाय भी दिया है। तो उसका नाम है यमी, यानी कि यमुना, जिसके जल में स्नान करते ही जीव के प्रति जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पुनर्जन्म का जो भय है वो नष्ट हो जाता है। तो ये उसका जन्म का इतिहास है। और भौगोलिक रूप से देखा जाए तो आप देखते हैं कि यमुना जी जो है वो यमुनोत्री में उसका उगम होता है। आप आज भी जाएंगे, अभी चार धाम यात्रा ओपन हो जाएगी तो एक ऐसा स्थान है जहां से आगे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन यमुना जी का जल आते हुए दिखाई पड़ेगा। गंगा जी का भी ऐसा ही है, गोमुख है एक 19 किलोमीटर आगे, गोमुख गंगोत्री के आगे। आप कुछ हद तक आगे जा सकते हो, उसके आगे आप जा नहीं सकते हो। और वहां से जैसा होता है कि आसमान से, यहां पर कुछ भी नहीं है, वहां से ऐसा जल आ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। और उसके आगे उसका दिव्य गोमुख है जहां पर व्यास मुनि और अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि जैसे महान ऋषि वहां पर रहते हैं और उनको वो दिव्य गोमुख का भी दर्शन होता है, जहां पर दिव्य लोगों से वो वहां पर अवतरित होते हुए नजर आती है उनको, जो शुद्ध जीव है, सुखदेव है, नर नारायण ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे हैं। वैसे यमुनोत्री का जल का उगम है, भगवान के धाम से, वो गौलोक धाम से प्रकट होती है। वो साथ साथ टेक्निकल रूप से विशाखा देवी का भी विस्तार है, शी इज एक्सपांशन ऑफ विशाखा देवी ऑल्सो। जब वो आती है तो नीचे नीचे आती है, फिर हरियाणा के पास आती है, फिर वहां से दिल्ली आती है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश से फिर वो श्री वृंदावन धाम में आती है। और अगर आप श्री वृंदावन धाम को अगर नेत्र के रूप में समझते हैं, समझो नेत्र है, तो जमुना देवी है वो काजल की तरह है, क्योंकि जैसे ही आती है श्री वृंदावन में तो ऐसे पूरा उसको परिक्रमा करके फिर चले जाती है आगे। तो जमुना जी का जल जो है वो बहुत ही गहरे रंग का है, जैसे काजल होता है, बहुत गहरे हरे रंग का है वो। और जब वो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करके आगे चली जाती है तो पूरा जमुना वृंदावन को कवर कर लेती है। जो दूर से देखा जाए सैटेलाइट से तो आपको श्री वृंदावन धाम के ऊपर काजल लगाया हुआ दिखाई पड़ेगा, वैसे जमुना जी है। और शास्त्र में वर्णन दिया गया है कि देवतागण ब्रह्मलोक से लेकर हमारे ऊपर जो पहला स्वर्ग लोक है, सभी स्वर्ग लोग, सात स्वर्ग लोगों के सभी देवता लोग जो है जमुना जी की पूजन करते हैं, जमुना जी से कृपा मांगते हैं। क्योंकि जमुना जी केवल नदी नहीं है, वो ऐसी एक विशेष नदी है, विशेष देवी है, जो भगवान की पंचम पत्नी भी है। हाँ, कोई भी नदी भगवान की साक्षात पत्नी नहीं है, ये भगवान की 16108 जो रानियां हैं उसमें 8 पट रानियां हैं, प्रधान रानी रुक्मिणी है, और उसमें पंचम पत्नी जो है वो जमुना जी है। उसकी विवाह का वर्णन भी महाभारत में आता है, जब खांडव प्रस्थ को जब कौरवों ने पांडवों को दिया तो वो जंगल था पूरा, तो भगवान ने अर्जुन के साथ जाकर अग्नि को भक्षण करा दिया, उसका जला दिया, उसको अग्नि को भोजन करा दिया। तब वो थके थे, दोनों बैठे थे जमुना किनारे, तो तुरंत एक देवी वहां पर आती है। तो अर्जुन को भगवान कहते जाओ पानी लेके आओ, प्यास लग रही है, तो वो देवी से उनकी मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि आप कौन हो, यहाँ पर आप लगती हो अविवाहित हो, इतनी सुंदर हो, सलंकृत हो, अलंकार पहने घूम रही हो, क्या आपके मन में इच्छा है बताओ। तो कहते कि मैं जमुना देवी हूं, जब से मेरा जन्म हुआ है तब तक मैं विष्णु के साथ विवाह करने के लिए मेरे ही जल के अंदर तपस्या कर रही हूं। तो जल लेकर अर्जुन जाते हैं कृष्ण के पास, वो बताते हैं कि ऐसी एक देवी है जो आपके बारे में ऐसे बता रही है। तुरंत भगवान जल प्राशन करके उठते हैं और जमुना जी का हाथ ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, और विवाह हो जाता है उनका। तो उनकी पंचम पत्नी है। बहुत अच्छी कथा है, हमने आपको संकट संक्षेप में बताया। अभी ये जमुना जी का जो गौरव है वो द्वापर में पूर्ण रूप से प्रकट होता है, जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं उनके किनारे पे और लीला करते हैं। लेकिन रामायण में भी इसका गौरव कहा गया है, जब राम भगवान सीता देवी के साथ वनवास में जा रहे थे, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। जब वनवास में आते हैं घूमते घूमते तो जमुना किनारे आते हैं, तो सीता देवी कहती है हे स्वामी, जमुना देवी का यहाँ पर अस्तित्व है, प्रादुर्भाव है, ये बड़ी दिव्य देवी है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र भी कहते हैं हाँ ये बड़ी दिव्य देवी है, इसकी आराधना जरूर होनी चाहिए। तो वनवास में उनका कोई साधन नहीं था, जो भी साधन था गंदा फूल वह जो भी था सब लेकर उन्होंने पूजन किया है। और आप सोच सकते हैं 3 महासतियों में सीता देवी का वर्णन आता है, एक अनसुया है, एक पार्वती है, और एक सीता देवी है, द्रौपदी भी है वैसे। तो ये महासतियों में सीता देवी है, और वो महासती क्या पूजन करती है और क्या मांगती है जमुना जी से, मेरे पातिव्रत का रक्षण करो, मेरे पातिव्रत को बढ़ाओ, ऐसा वो याचना करती है उनसे। और स्तुति में कहती है कि जब मैं वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटूंगी तब मैं अनंत गौओं से लेकर आपका पूजन करूंगी, क्योंकि जमुना जी को गौवें बहुत प्रिय है, अनंत गौवें द्वारा गायों को लेकर मैं आपका पूजन करूंगी। और एक शब्द आता है वहां पर सूरा खताम, यानी कि देव दुर्लभ उसका अर्थ है। उसका भी अर्थ यह है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसी वस्तुओं को मैं लेकर आऊंगी और आपका पूजन करूंगी पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरे गौरव के साथ। तो आप समझ सकते हैं सीता जैसी देवी भी अगर पातिव्रत की रक्षा के लिए जमुना जी से पूजन करती है तो जमुना जी का पोजिशन क्या है। तो इस तरह से जमुना जी केवल भारत की नहीं, केवल हिंदुओं की नहीं, केवल हरे कृष्ण भक्तों की नहीं, पूरे विश्व की निधि है। और हमारा जो पूजनीय ब्रज भूमि है उसकी वो धरोहर है। धरोहर का मतलब इंग्लिश में कहते हैं लेगेसी, ये हमारे लिए छोड़ा गया है। श्रीमद् भागवत में 10 स्कंद में 22वें अध्याय में कहा गया है कि कृष्ण भगवान जब लीला कर रहे हैं जमुना किनारे, मैं आपको दिखाऊंगा चित्रपट, उसमें वो गौओं से कहते हैं कि अभी आप यहां विश्राम करो, ये बहुत सुंदर जगह है, जमुना जी का ठंडा शीतल मंद प्रवाह बह रहा है, उसकी सुगंध बह रही है। क्यों सुगंध बह रही है? क्योंकि उसके अंदर भगवान का अंगराग है। अंगराग मतलब जो अंगों को लगा हुआ, जो चंदन, कुमकुम, अगुरु और सुंदर सुंदर द्रव्य और फूल, सबका रंग और खुशबू है। और शीतल प्रवाह वायु जो है उसके बाष्पों को लेकर यहाँ पर फूलों के पुकेसरों का जो सुगंध है आसपास खिले हुए, उसका जो जल का सुगंध है, उसके जो बाष्प है उसको वायुदेव लेकर हमारे शरीरों को लगा रहा है और बहुत ठंडक और आनंद का अनुभव हो रहा है। तरह तरह के कमल खिले हुए हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, उनकी भी खुशबू आ रही है। और इस यमुना के जल में चक्रवाक, राजहंस जैसे सुंदर सुंदर पक्षी जो अभी दिखाई नहीं पड़ते हमारे कलयुग के अंदर, ऐसे अनंत पक्षी विहार कर रहे हैं। उसके ऊपर से तोता, मैना, मोर और कोयल, सुंदर पक्षी विहार कर रहे हैं उसके ऊपर, अपना सुंदर कलरव कर रहे हैं, मतलब किल्लोल कर रहे हैं, सुंदर ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण कहाँ मिलेगा? और तब लोग हम लोग यहीं बैठ जाते हैं और ये हमारा दोपहर का भोजन करते हैं। उसको कहते हैं छाक लीला। छाक यानी कि जब भगवान लीला में बीच में व्यवधान देकर बैठकर भोजन करते हैं, उसको छाक लीला कहते हैं। कुछ भोजन वो घर से लेके आते हैं जो बीच बीच में खाते रहते हैं। जब मेन समय आता है तो कुछ गोपियां जो है बाल लीला में, यानी कि वत्स लीला में, जब भगवान केवल छोटे गायों का भार संभाल रहे थे तो उनको वत्सपाल कहते हैं। जब गोपाष्टमी दिन 5 साल के बाद में उनको बड़ी बायों का भार सौंपा गया तो वो गोपाल बन गए, तो दूर दूर जाने लगे। तो दूर दूर और पास पास कुछ गोपियां उनको दर्शन करने के बहाने, उनको दर्शन नहीं ना होना व्याकुल कर रहे हैं, दर्शन करने के बहाने यशोदा मैया से और घर से छाक यानी कि भोजन लेकर ढूंढ ढूंढ के जाते हैं कौन से वन में विहार कर रहे हैं। तो वहां पर जमुना किनारे भी वो पहुंचती हैं और घर से लाया हुआ भोजन उनको देती है और वो वहां बैठकर विहार करते हैं। विहार करने के पश्चात अपने सखाओं को कहते हैं, तत्र गाय पायित्वा अपाह समृष्टः शिवा। क्या कहते हैं उसका मतलब? इस जल को प्रसन्न करो। ये जल न केवल शीतल, कोमल और मृदु है, न केवल सुगंधमयी है, समृष्टः ये औषधि भी है, इससे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। और शिवा ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ये आत्म कल्याणकारी है। स्वयं भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं, कितनी उपमा दे रहे हैं, कितनी पदवी दे रहे हैं। और गोपाल जो है सब लोग मिलकर जमुना जी का वो जल प्राशन करते हैं और थके हुए सब गोपाल जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। और आगे जाकर आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह से आपके सामने जमुना जी का सुंदर दर्शन आप देख सकते हैं। मोर खिल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सुंदर जल प्रवाहित हो रहा है, वृक्षावली सघन जमुना जी के प्रवाहित को शोभित कर रही है। हाँ, और आप देखो यहाँ पर श्लोक लिखा गया है। ये कई लीलाओं का मैं आपको ये फोटो क्यों दिखा रहा हूं कि इस छोटी सी कथा में इन सारी लीलाओं का वर्णन नहीं हो सकता है जो जमुना जी किनारे होता है। जमुना जी किनारे जो भगवान लीला करते हैं सबका वर्णन अभी यहाँ पर नहीं हो सकता है। एक एक कथा एक घंटा लगेगा बताने। ये नौका विहार है, भगवान सुंदर नौका में बैठकर गोपियों को लेकर वाद्य संगीत, गीत, नृत्य, भोजन करते हुए अनंत समय तक ब्रह्मा जी की एक रात तक उसमें विहार करते रहते हैं। ये नौका विहार है। इसके आप देखिए गौचारण लीला है। रम्य तीर रम भ्रमन गौ कदम्ब भूषिता, दिव्य गंध भ कदम्ब पुष्प राज रोषिता, नंद सूनु भक्त संग संग अम्ब संग अमा बिना निधि, मां पुनत्व वद अरविंद बंधु नंदिनी। ये यमुनाष्टकम का वर्णन है। कैसे वर्णन आता है यमुना किनारे में भगवान अपने अनंत गौओं को, हाँ जो 108 झुंड है, कोई गौर वर्ण की है, कोई श्यामली वर्ण की है, कोई तिलकनी है, कोई कस्तूरी वर्ण की है, कोई गंध वर्ण की है, कोई कुमकुम वर्णी है, हाँ ऐसे 108 गुंडों को लेकर कैसे आनंद से मुरली बजाते हुए दशम स्कंद में इसका वर्णन आता है। कैसे वो यमुना किनारे भाग रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और गौ भी कैसे उनके पीछे पीछे भाग रही है। ये गौचारण लीला है, इसमें अनंत लीलाएं हैं गौचारण में। ये केशी घाट है, यहाँ पर केशी राक्षस का भगवान ने वध किया है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं अपने उपदेशामृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में कि किसी भी व्यक्ति को अगर भौतिक लालसा है, भौतिक लालसा है, केशी घाट पर मत आना। यहाँ पर श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में अब हाथ में बांसुरी लिए हुए खड़े हैं और अपने मुरली से बहुत सुंदर धुन बजा रहे हैं। जो इस दर्शन को करेगा, उस धुन को सुनेगा, सब भौतिकता उससे छीनी जाएगी, सब इच्छाओं का नाश होगा। इसलिए संभाल कर जमुना किनारे केशी घाट जाना, अगर भौतिक दुनिया में इंटरेस्ट है वहां मत जाना, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि वहां पर जाओगे तो श्याम सुंदर जी सब कुछ छीन लेंगे। अपने सुंदर दर्शन से और अपने सुंदर मुरली की धुन से, अष्ट प्रकार की धुन बजाते हैं वो, एक एक प्रकार की धुन बजाकर आपके हृदय को छीन लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, आप एकदम निर्धन हो जाएंगे लेकिन भक्ति से मालामाल हो जाएंगे। ऐसे रूप गोस्वामी, ये जमुना का दूसरा किनारा है, ये जमुना देवी का दर्शन है, वो किसी घाट में उसकी मूर्ति भी है, उसका पूजन भी होता है। देखिए आप देख सकते हैं उनका वर्ण भी कृष्ण जैसा है ना, इसलिए उनका जल उनके रंग का है। और देखिए कितना गौरव है, जैसे ही भगवान ने जन्म लिया सबसे पहले जमुना जी में गिर गए हो। हाँ, दो प्रकार की कथा आती है अलग अलग पुराणों में, कल्प भेद के रूप में वसुदेव जी उनको लेकर चले गए। पहला आदेश क्या गया, जमुना जी को पार करके मुझे गोकुल पहुंचाओ। और जैसे ही बास्केट में लेकर, यहां पर तो हाथ में लेकर दिखा रहे हैं, भगवान अनंत प्रकार की लीला करते हैं, उनको जरूरत नहीं कि हर बार बास्केट में जमुना को पार करें, कभी हाथ में पार कर रहे हैं, कभी गोद में, जैसे भी उनकी इच्छा हो वैसे अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार से, एक एक लीला विविध प्रकार से होती है, उनके अंदर अनंत विविधता है। तो कहते हैं कि वो बास्केट में थे तो जमुना जी ऊपर आ रही है, अरे घुटनों तक आई, कमर तक आई, नाभि तक आई, छाती तक आई, नाक तक आई, नाक के ऊपर चली गई। तो जब वसुदेव चिल्लाने लगे, कोई लो कोई लो कोई लो, बचाओ मेरे लाला को बचाओ, तो कान्हा ने उस पैर अपने बाहर निकाल दिए, तो जमुना जी और भी ऊपर गई, जो पैर को स्पर्श किया तो तुरंत रास्ता दिया। क्योंकि जमुना जी भगवान के दर्शन के पश्चात उनके चरणों का दर्शन करने के लिए बहुत आतुर थी, तो चरणों का स्पर्श किया, तुरंत रास्ता दिया। और एक पुराण में कथा आती है कि वो हाथ में लेके जा रहे थे, जैसे जल ऊपर ऊपर आने लगा तो वो गिर गए वो पानी में, वसुदेव को ढूंढ के निकालना पड़ा। जैसे ही पानी में गिरे तुरंत रास्ता मिला, क्योंकि जमुना जी को कृष्ण भगवान को स्नान कराना था, अपने जल से प्रेम व्यक्त करना था। तो ये देखिए, जन्म से ही, जन्म होते ही पहले ही भगवान ने जमुना देवी पर कृपा किया, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जमुना जी कृष्ण भगवान का चरणामृत भी है। जैसे हम भगवान को सुबह अभिषेक करते हैं ना, उसका जल इकट्ठा करते हैं, उसको पीते हैं, उसको प्राशन करने से क्या होता है, जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि जन्म के जो पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। केवल पाप ही नहीं, पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अरे तो भयंकर बात है, पुण्य भी नष्ट हो रहे हैं, क्यों? अरे पुण्य भी बहुत हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि पुण्य भी हमको स्वर्ग में जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं, शरीर धारण करने के लिए मजबूर करते हैं, जन्म मृत्यु की चक्र में फंसने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए हमारे लिए पुण्य भी घातक है और पाप भी घातक है, तो ये पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देते हैं। तो वैसे प्रवाहित होने वाला अनंत मात्रा में जल यहाँ पर उपलब्ध है, जिस पर जब भगवान ने कृपा किया है। और ये क्या है, जल क्रीड़ा है। इसमें कभी भगवान राधा रानी के साथ अकेले हैं, कभी कुछ आठ सखियों के साथ में हैं, कभी प्रथम चक्र जो है उनका सर्कल जो है उसके साथ में है, कभी अनंत जूतों के साथ में। एक जूत जो होता है वो तीन करोड़ गोपियों को होता है। ऐसे हर एक गोपी के अनंत जूत हैं और हर एक जूत की एक एक गोपियां प्रमुख हैं। तो सबों को आनंद देने के लिए एक एक जूतों को लेकर वो जमुना जी के जल में जाते हैं, और कभी भावना होती है तो अकेले राधा रानी के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं। बहुत उत्कट लीलाओं का वर्णन जमुना जी के अंदर आता है। और देखिए आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एरो दिखाया है, यहाँ पर जमुना जी बह रही है, इसमें राजहंस है, इसके किनारे में भगवान बहुत चटपटी लीला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो हंसी मजाक हो रही है। एक बार तो वो भोजन कर रहे थे तो सुदामा ने खीर लाई थी, तो और सुदामा ने कहा कि इतनी बढ़िया खीर है, तो भगवान कहते हैं बहुत कड़वी खीर है, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। तो सुदामा कहते हैं, अरे जिसके नाना मूर्ख होते हैं उनको स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। आपके नाना सुमुख जो थे, माता के पिताजी थे, उनकी पत्नी जो है वो मोटी और काली रंग की थी, और ये छोटे कद के थे, उससे लंबी थी वो, उनको वैसा मजाक कर रहे हो, सोच रहे हैं कैसा मजाक हो रहा है कि जिनके नाना मूर्ख होते हैं उनको स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। आपके नाना ने ऐसे ही, क्योंकि नाना जो थे वो बहुत सुंदर नचकैया थे, मतलब बहुत नाच में एक्सपर्ट थे, और उसमें नाच में उतने सुंदर नहीं थे वो, लेकिन नाच में मोहित होकर उनकी नानी जो थी उन्होंने उनके विवाह किया था, बोला ऐसे नचवैया थे वो। अब ये सब मजाक की बातें हैं, किस प्रकार की मजाक की बातें हो, देखिए आप देख रहे हैं कैसा खेल खेल रहे हैं यमुना किनारे में। ऐसे चटपटी जो लीलाएं हैं वो जमुना किनारे भगवान करते हैं। और ये छाक सेवन का मैंने आपको पहले वर्णन कर दिया, बहुत सुंदर कमलाकार बैठकर, कमला कमल के मध्य में बैठकर भगवान भोजन करते हैं, अपने सखाओं के हाथ से जूठा चबाया हुआ खाया हुआ खाना जो है बड़े प्रेम से सेवन करते हैं। ब्रह्मा जी भी देखकर मोहित हो जाते हैं, ये सब जमुना की लीला है। और जमुना किनारे आप देखते हैं, जब भी श्रुति गोपियों ने तपस्या किया था, श्रुति गोपियों ने भगवान से संवाद किया है, उसका क्षीर सागर का दर्शन भगवान ने उनको कराया है। बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, गर्ग संहिता में आती है। तो श्रुति देवियों ने जमुना देवी का आश्रय ग्रहण किया, जमुना देवी का पूजन किया है। तो जमुना देवी के पूजन के और आशीर्वाद की कृपा से श्रुति देवियों को जो वेद हैं, वेद जो गोपी के जो देवियों के रूप में प्रकट होते हैं ब्रज लीला में, उन देवियों को तीसरे ही दिन उस पूजा के बाद में भगवान ने रास लीला में प्रवेश दिया है। रास मंडल जो है पहले बंसीवट का जो है वो जमुना किनारे है, आज जियोग्राफिकली वो 5 किलोमीटर अंदर है, लेकिन ब्रज मंडल रास मंडल जो होता है वो अनंत किलोमीटर बड़ा होता है। तो बंसीवट जमुना किनारे ही था, और फिर उसके किनारे में भ्रमर घाट है, फिर वो इमली तला है, ये सब जो है ये पूरा जमुना किनारे का ब्रज मंडल रास मंडल है। वहां पर ये लीला हुई, और वहां पर पहले जब उन्होंने पूजन किया है जमुना जी का, तो दूसरे दिन उनका चिरहरण हुआ है। चिरहरण सभी गोपियों का नहीं हुआ था, जो श्रुति गोपियां बनी थी, जो श्रुतियां गोपी बनी थी उनका ही चिरहरण हुआ है, और यह जमुना किनारे में हुआ है। फिर आप देखते हैं भगवान मुरलीधर हैं, हाँ, उनकी मुरली की तान सुनने के लिए सब व्याकुल रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड व्याकुल रहता है, गोपियां व्याकुल रहती हैं, लेकिन ये मुरली जो उन्होंने सीखी है उनके गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। और जमुना किनारे में आनंद से बैठकर भगवान उनके शिष्य बने हुए हैं, राधा रानी उनके गुरु बनी हुई है और उनको मुरली सिखा रही है। और फिर वो मुरली जो सीखे हुए हैं जब वो बजाते हैं तो उस मुरली के तान से वो खुद मोहित हो जाती है। ये भगवान की लीला है। देखिए राधा रानी यहां पर कृष्ण भगवान को जमुना किनारे में मुरली बजाने की शिक्षा दे रही है, और ये जल के लिए है। हाँ, इसमें होली भी खेली जाती है, इसमें हर प्रकार की लीला होती है। इसमें एक जगह है जहां पर भगवान जो है गुप्त रूप से जल में प्रवेश करते हैं और अंडर वाटर जाते हैं और राधा रानी के चरण पकड़ते हैं, और चरण पकड़कर अचानक उनके मुंह के सामने प्रकट हो जाते हैं, सब गोपियों के झुंड के अंदर सडनली नीचे से आकर प्रकट, ऐसी एक लीला है ये जमुना किनारे होता है। और देखिए पीछे यहां पर जमुना जी है, और यहां पर फूलों का झूला और सखियां उनको झूला झूला रही है, झूला झूले राधा रानी चुनरिया फहर फहर फहरे। हाँ, भगवान के अलंकार, भगवान के वस्त्र, भगवान की माला सब झूल रहे हैं, जब झूला झूल रहा है उनकी खुशबू आ रही है, और दोनों की मालाएं जो है एक दूसरे में अटक रही हैं, और जब झूला झूलता है तो माला खींची जाती है तो माला के मणि गिर जाते हैं, और सब सखियां उनको बिनने के लिए प्रसाद के रूप में व्याकुल रूप में भाग जाती हैं और पकड़ती हैं कि जो मणि टूट कर बिखर रहे हैं उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए सब गोपियां भाग भाग कर प्रसाद ग्रहण करती थी। ये झूलन लीला का दृश्य है यहाँ पर। फिर गौचारण है, हाँ, और ये रास लीला है, सबसे श्रेष्ठ लीला। भगवान ने कहा किया सबसे पहले बंसीवट में शरद ऋतु में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें कहा गया जमुना किनारे किया, यहीं से वो अंतर्दान हो गए हैं। इसी लीला के जमुना के सहारे उन्होंने जो लीला किया है उसमें उन्होंने अनंत रूप धारण किए जितनी गोपियां थी, और ब्रह्मा जी की एक रात तक यानी कि 12 घंटे यानी कि एक कल्प यानी कि 1000 कल्प, 1000 कल्प मैंने बताया ना पहले आपको वर्णन किया उसका समय कितना होता है, 43,20,000। इस नंबर को आप जब 1000 से गुणित करेंगे तो वो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इतने साल तक भगवान ने यहां पर रास किया, फिर वो अंतर्धान हो गए, फिर गोपियां व्याकुल हो गई, उन्होंने भ्रमर गीत वेणु गीत गोपी गीत गाया है, फिर वहां से वो इमली तला आए हैं, और भगवान ने वहां पर व्याकुल होकर जमुना किनारे में इमली तला में बैठकर ध्यान किया है राधा रानी का, और वो गौर वर्ण के हुए हैं, फिर राधा रानी ने उनको स्पर्श किया है, फिर वो वापस श्याम वर्ण के हुए हैं, और फिर वहां पर उन्होंने जमुना किनारे बैठकर ऐलान किया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कलयुग में मैं इसी वर्ण में इसी भाव को लेकर आऊंगा, और तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है वो सब जगह बांटूंगा हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐलान जो है जो हमारे लिए इतना आशादायक है, ये ऐलान उन्होंने जमुना किनारे में बैठकर किया है, और उसी रूप में फिर वो कलयुग में आए गौरांग महाप्रभु बनकर। और फिर ये स्नान लीला है, हाँ, क्या वर्णन करें, हम तो उसके योग्य भी नहीं है, ना हमारी योग्यता है ना हमारी इतनी शुद्धि है कि इस उत्कट लीलाओं का वर्णन कर सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि जमुना जी में क्या क्या नहीं किया भगवान ने। ओके, इसके आगे हम कहते हैं कि जो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत वो है भगवान ने इसमें गेंद खेला है। जब भगवान गेंद खेलते थे कभी कभी जमुना जी में गिरता था, जैसे कहा गया कि जब वो जमुना जी में गेंद लेने के लिए झुकते थे तो अपना प्रतिबिंब देखा करते थे, और अपना प्रतिबिंब देखकर अपने ही सौंदर्य को देखकर खुद मोहित होकर बेहोश होकर उस जमुना में गिरते थे। अपना ही प्रतिबिंब द्वारका में जो खंभे हैं द्वारका के महलों के, उसमें देखकर भी मोहित हो जाते थे और बेहोश हो जाते थे। फिर वो गिरते थे, फिर होश में आते थे, फिर गेंद लेकर बाहर आते थे। कालिया जब बहुत उसका आतंक हो गया था तो जमुना किनारे में कदम्ब झाड़ पर चढ़कर अपने सुंदर दिव्य चरण कमलों का स्पर्श उस वृक्ष को देकर भगवान छलांग लगाते हैं और उसी के अंदर रहकर बहुत देर तक युद्ध करते हैं और फिर उसी से बाहर निकलकर कालिया के हजारों फनों पर अपने दिव्य चरण कमलों से, कोमल चरण कमलों से सुंदर नृत्य करते हैं और सभी देवताओं को, गंधर्वों को मोहित कर देते हैं। ये भी जमुना जी की लीला है। हाँ, क्या क्या बताएं आपको। जमुना जी की कभी कभी एक भांडेरवट में एक वृक्ष है, उसका ऐसा वर्णन आता है कि उसकी एक एक शाखा जो है वो भांडेर वन से लेकर मथुरा तक पहुंचती है, नंदगांव तक पहुंचती है और सारे ब्रज तक पहुंचती है। और ब्रजवासी जो लोग थे गौर ग्वालबाल, वो बंदरों की तरह खेल खेल में उन शाखाओं से जमुना जी को पार करके अलग अलग वनों में जाते थे। और जो बीच में भाव आता था तो बीच में ही जमुना जी आएगी तो उसमें से जमुना जी में कूदते थे, फिर तैर के जाते थे दूसरे वनों में। और जमुना जी ने ब्रज भूमि को जो 12 प्रमुख वन है उसमें तो डिवाइड भी किया है, 5 वन इस प्रकार इस जगह पर है, 5 वन 7 वन दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से जमुना जी का गौरव जितना करे उतना कम है। लेकिन आज के कथा का उद्देश्य यह है कि हम सबको जानना चाहिए कि हमारे लिए जमुना कितनी इंपॉर्टेंट है। ये केवल हरे कृष्णा के भक्तों के लिए या हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग गीत गाते हैं ना, जनम गण अधिनायक जय, गाए क्या पूरा उसको। हाँ, क्या कहते हैं उसके अंदर, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया, उत्कल मतलब ओरिसा, बंग मतलब बंगाल, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जल भी तरंगा, कहते हैं ना हम लोग। हाँ, स्कूल में पढ़ा है हमने। और हमारे मंदिर में क्या होता है, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय बोलते हैं ना हम लोग। हर जगह पर यमुना और गंगा का, ऑल ग्लोरीज टू गंगा एंड यमुना बोलते हैं ना हम लोग अपनी प्रार्थना के बाद, प्रेम ध्वनि के अंदर बोलते हैं ना। तो क्या वो केवल बोलने के लिए है, उसका हमारे जीवन में कुछ स्थान नहीं है क्या, केवल जय करने के लिए है खाली। अरे हमारी हम यात्रा लेके जाते हैं, अगर जमुना जी बहुत सुंदर अवस्था में ऐसे जैसा मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, ऐसा केवल आपको अगर आपको दिखाई पड़ेगा वैसे, तो केवल दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाएंगे। शास्त्र में लिखा है कि ब्रज भूमि में जब जमुना देवी प्रवेश करती है, वो तो जमुना देवी आगे भी है ना, लेकिन जब ब्रज में प्रवेश करती है तो उसके पहले अगर आप स्नान करेंगे तो केवल पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे, न केवल पाप नष्ट हो जाएंगे, ब्रज में स्नान करेंगे तो साथ में पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त होगा। और यहां तक कि अगर आप जमुना किनारे खड़े रहकर, समझो आप किसी घाट के पैलेस में खड़े हैं या तो भ्रमर घाट में खड़े हैं, इमली तला में खड़े हैं और जमुना जी को निहार रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम से अगर जमुना जी को कोई ब्रज में निहारता भी है, देखता भी है, तो उसके लिए उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि 64 भक्ति के तत्व हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, उसमें 5 तत्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और 5 में एक है धाम निवास, और धाम मतलब वृंदावन धाम भी उसमें आता है। और वृंदावन धाम में जमुना जी का निवास, जमुना जी का स्नान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग आचमन करते हैं उसका जल का और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा पाप नष्ट हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। हमारे जब रिश्तेदार मर जाते हैं तो हम लोग ध्यान पूर्वक उसकी अस्थियों को रखकर जमुना जी में उसको बहाते हैं, क्योंकि जमुना जी में अस्थि बहाने से उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। जमुना जी में अगर कोई श्रद्धा से उस अस्थि को बहाता है तो उसको गौलोक धाम प्राप्त हो जाता है, वो अंतिम गंतव्य स्थान है, ऐसे ब्रजवासी बताते हैं। देयर इज नो अदर स्टेशन, और कहीं जाकर आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, किसी भी तीर्थ में जाकर। तो इतना महान जमुना है, हम लोग यात्रा लेके जाते हैं और अगर वो नष्ट हो जाए तो क्या मिलेगा हमको। हम कल कथा सुनेंगे, ऐसे हुआ करता था, ऐसा था, ऐसे ऐसे इसका वर्णन हुआ है, और हमको क्या देखने को मिलता है, कचरा, गंदगी, मलमूत्र, केमिकल्स, हाँ, सांप और मरे हुए मछली पॉइजन से। तो क्या होगा, हमारे बालकों को क्या दिखाएंगे। हमने, हमारा थोड़ा बहुत भाग्य था, हमने 25 साल पहले 30 साल पहले जाकर उधर जमुना जी का सुंदर दर्शन भी किया है, गहरा दर्शन भी किया है, हाँ, अच्छे अच्छे स्वान तो नहीं, कम से कम राजहंस नहीं, बदकों को घूमते हुए देखा है, हाँ? वो नहीं मिलेगा आगे जाकर। तो आज क्या उसकी अवस्था है बताएंगे आपको। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है इसलिए है कि हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन हम सब के लिए श्री वृंदावन धाम, गोवर्धन, गिरिराज, वृंदावन के वन, श्री कृष्ण भगवान की लीला, हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। जमुना जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी तीर्थ यात्रा का और धाम निवास का क्या महत्व है? और श्री वृंदावन धाम में गोवर्धन ही खत्म हो जाएंगे और जमुना जी नष्ट हो जाएंगी तो किसका संग करेंगे हम? भगवान ने किसी मंदिरों में लीला नहीं किया, भगवान ने वनों में, पर्वतों पर, नदी किनारे पर लीला किया है। धाम जो स्वयं प्रकट है वो भूमि पर प्रकट है, और जमुना जी उसका एक विशेष अंग है। तो आज की स्थिति क्या है, ये थोड़ा सा प्रेम जागृत करने के बाद थोड़ा दर्द भी हम जागृत करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि जब दर्द होगा तो कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ उसके प्रति कुछ कार्य होगा, हाँ। अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि जमुना जी का वाटर जो है ई क्लास का है, क्लास ई। अब ये क्लास क्या है मैं आपको बताता हूं। ए क्लास में क्या होता है कि पानी बिना ट्रीटमेंट के पीने के योग्य है। अगर जमुनोत्री जाओगे आप तो जमुनोत्री के अंदर पानी आप ऐसे निकाल के पी सकते हो, इतना सुंदर उसका तल भी दिखाई पड़ता है, एक एक पत्थर दिखाई पड़ता है, एक मछली भी दिखाई पड़ती है, इतना सुंदर और आरोग्यदायक और सुंदर सुमधुर जल है उसका। शास्त्र में ऐसा वर्णन दिया गया है कि गंगा जी का जो जल है वो औषधि ज्यादा है, लेकिन मिठास में जमुना जी, दोनों औषधि है लेकिन मिठास में जमुना श्रेष्ठ है, औषधि मात्रा में गंगा जी श्रेष्ठ है। ऐसा जल आप पी सकते हो, उसको ए क्लास जल कहते हैं। बी क्लास जल को कहते हैं कि जिसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है फिर वो पीने योग्य होता है, उसको क्लास बी कहते हैं। और क्लास सी उसको कहते हैं जो पीने के योग्य नहीं है, केवल स्नान के और कपड़ा धोने के और लैट्रिन के लिए योग्य है। हमारे घरों में होता है ना, एक पानी लैट्रिन के बाथरूम में आता है, एक पानी नल में आता है, हम उसको गर्म करके पीते हैं, और लैट्रिन का पानी जो खाली फ्लश करने के लिए यूज करते हैं वो क्लास सी वाटर है। और क्लास डी वाटर जो है उसमें जलचर जो प्राणी होते हैं ना, जैसे कि कछुआ है, मछली है, अलग अलग प्रकार के जल के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनको रहने के लिए योग्य है, वो उसमें जी सकते हैं। और क्लास सी का मतलब क्या है, उसके अंदर मछली जी नहीं सकती है, वो पीने के लिए योग्य नहीं है, वो स्नान करने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि अगर वो स्पर्श करेगा चमड़ी को तो चमड़ी के रोग हो जाएंगे। वो केवल इरिगेशन यानी कि जहां पर आपको पानी ऐसा कुछ मल मूत्र है तो उसको बहाना है, ऐसे जल ऐसे के लिए वो हो सकता है आज। और उसमें जल के कोई जीव जी नहीं सकते हैं। आज हमारे गवर्नमेंट इतनी कृपालु है कि उन्होंने जो सोनपत, पानीपत नाम की जगह है ना, वो सब आगे हम जाएंगे पश्चिम एक्सप्रेस से दिल्ली के आगे जाएंगे तो आपको सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अमृतसर ऐसे स्टेशन आएंगे, वो सब इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पर जमुना जी बहती है, सारे इंडस्ट्री के वेस्ट जो है उसके अंदर डाल देते हैं वो लोग। और गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का रेजोल्यूशन है कि उसके अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपना वेस्ट जो है नदी में डालेगी नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का रेजोल्यूशन है। लेकिन सारे अधिकारियों को पैसा दबा दबा कर सारी इंडस्ट्रियां जो है अपना सारा केमिकल जो है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, बहुत जहरीले द्रव्य है ये, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, आर्सेनिक और आयरन और क्या क्या बहुत भयंकर चीज होती है जो हमारे लीवर को, पेट को, आंतों को कैंसर दिलाती है, रोग दिलाती है, और उसके पास साथ साथ सारी जलचरों को मार देती है, वो सब उसमें प्रवेश करता है अनंत मात्रा में, कोटि कोटि लीटर्स के अंदर ये द्रव्य जो उसमें प्रवेश करता है। और साथ में क्या होता है, सारे शहर जितने उसके किनारे में, इतना दुर्भाग्य हमारा है, जितना मल मूत्र है वो सब उस नदी में छोड़ देते हैं। हम लोग तो अभी वृंदावन पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग उधर ही है, वहां से प्रवाह हो रहा है। और इसके तीन शास्त्र में वर्णन आता है, इसके तीन चार खंड है जमुना जी के, दिल्ली तक एक खंड है, दिल्ली के आगे वृंदावन तक एक खंड है, वृंदावन के आगे प्रयाग तक एक खंड है, और प्रयाग से समुद्र में जहां मिलती है वहां पर एक खंड है। तो जो दिल्ली से वृंदावन तक का जो खंड है वो कई किलोमीटर का है, हम तो जानते हैं कम से कम 150 किलोमीटर का है। उसके 22 किलोमीटर के अंदर जितनी गंदगी आज जमुना जी में जा रही है, उसके 90% गंदगी जो है मलमूत्र वाली, वो दिल्ली के 22 किलोमीटर में जमुना जी में प्रवेश करती। केमिकल तो आ ही गया है, मलमूत्र आ गया है, और जब दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली के आगे क्या होता है, हाँ आगे बताता हूं आपको। ये जमुना जी का दृश्य है, आप देख सकते हैं कहां पर है ये, ऊपर ताजमहल है, ताजमहल जगत का सातवां आश्चर्य है, वो सात आश्चर्यों में से एक है, दुनिया उसको देखने को आती है। हाँ, उसको भी बराबर मेंटेन नहीं करते, लेकिन कम से कम पैसे के लिए थोड़ा उसको मेंटेन करते हैं। उसके पीछे जमुना जी बहती है, तो कितना दुर्भाग्य है। जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए थे ना, राष्ट्रकुल स्पर्धा भी हो गई थी ना, आप जानते हैं ना, दिल्ली में बहुत घोटाला हुआ उसके अंदर, कलमाड़ी को अरेस्ट किया गया, बहुत सारा गड़बड़ हो गया उसके अंदर, करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का घपला हो गया उसके अंदर, 70,000 कोटी भगवान गवर्नमेंट ने खर्च किए उस गेम्स के ऊपर। और उन्होंने एक सर्वे किया, अरे अगर वो घूमते घूमते नदी किनारे गए तो क्या होगा, बोले फतवा निकालो, किसी भी यात्री को, किसी भी प्लेयर को जो परदेश से यहाँ खेलने के लिए गेम आएगा, उसको गलती से भी पीछे जमुना किनारे मत लेके जाना साइट सीइंग के लिए, क्या देखेंगे वो इधर। ऐसा गवर्नमेंट ने, वो है ना हमारी जो, क्या उस औरत का नाम है, सुषमा स्वराज, उसको पूछा गया क्या हम उसको उतने समय में क्लीन कर सकते क्या, तो उन्होंने कोशिश करने का प्रयास किया, लेकिन देखा गया इतना गंदगी है कि राष्ट्रकुल स्पर्धा शुरू होने के पहले इसको क्लीन नहीं कर सकते। इसलिए बेटर यह है कि सभी टूरिस्ट लोगों को, सबको आदेश दे दो कि उनको वहां लेके ना जाए वो। ये हमारे देश की स्थिति है, 2,500 रुपए केवल उसकी शुद्धि के लिए आवश्यकता है, और 70,000 करोड़ हमने गेम्स पर खर्च किया है, और उस पर 5,651 करोड़ हमने अर्निंग किया है, लेकिन हम लोग 2,500 करोड़ खर्च नहीं कर सकते उसके लिए। एनीवेज, तो ये इधर के पीछे का दृश्य है। अब ये वृंदावन का दृश्य है, सारे ओके, दिल्ली तक वो पहुंचती है, दिल्ली के पहले वृंदावन का जो शुद्ध और जमुना जी का जो शुद्ध जल है, उसमें 72% जल जो है हरियाणा खींच लेती है, और 12% जल जो है वो उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से को खींचा जाता है, डायवर्शन करते हैं उसको, नाला निकालकर कालवा निकाल लेते उसको, केवल 5% पानी बचता है, 5 या 10% वो दिल्ली तक पहुंचता है। और मैंने आपको बताया उसके अंदर सारी केमिकल गंदगियां फैल रही, ऑलरेडी आ रही है, आपको शायद सुनने का और बहुत आश्चर्य होगा, 32 करोड़ लीटर मलमूत्र हर दिन जमुना जी में केवल दिल्ली में प्रवेश करता है। और जब दिल्ली में जमुना जी पहुंचती हैं 5-10% पानी लेकर, तो उसमें से सारा जमुना जी का पानी दिल्ली खींच लेता है। और भारत ऐसा ही अनोखा देश होगा, इतना मूर्ख देश है हमारा, कि उसमें शुद्ध पीने का जल जो है वो कॉटन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भेजते हैं, जो पीने के लिए आवश्यक जल है वो इंडस्ट्री के लिए यूज कर ले किया जाता है। मैंने कहा ना, जो क्लास सी जल है या क्लास डी जल है वो इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, उसका उपयोग होता है, लेकिन हमारे देश में 72% पानी निकाल के उसका 0.5% पानी जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो करोड़पति है उनके कंपनियों में केवल मटेरियल साफ करने के लिए भेजते हैं। ऐसा केवल एक ही देश होगा। हाँ, दिल्ली पहुंचता है तो बचा कुचा सारा पानी उधर डैम बनाकर दिल्ली गवर्नमेंट ले लेता है पूरा। इतने आश्चर्य की बात है। इसके आगे आप देखिए, आपको ये मुझे, मेरा भी इतना दुर्भाग्य है, मैं 25 साल से वृंदावन जा रहा हूं, मुझे केवल 15 दिन के पहले पता चला है कि वृंदावन में जमुना आती नहीं है। कैसे आपको बताता हूं, ये देखिए, ये आती नहीं बैराज है यहां पर, ये हरियाणा के पास पानी जा रहा है 72%, ये जो जा रहा है 12% ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से में जा रहा है, और यहां से जो है ये इतना बड़ा प्रवाह दिख रहा है, लेकिन खाली प्रवाह दिखाया हमने, इसमें केवल 10% पानी जाता है, और 10% पानी यहां तक आता है, ये यहां पर दिल्ली है। हाँ, और दिल्ली में ये जो है ना, ये यहां पर, ये देख रहे हैं आप, यहां पर सारा पानी दिल्ली ले लेता है, और ये 72% पानी इंडस्ट्री में यूज करके मलमूत्र को साथ में लेकर ये पूरा यहां से लेकर यहां आता है, नजफगढ़ नाले में आता है, वही अच्छा पानी पीने लायक जो है वो इंडस्ट्री में घुमाकर साथ में मलमूत्रों को इकट्ठा करके ये जल जो है यहां से नजफगढ़ ड्रेन के रूप में जमुना जी में प्रवेश करता है, और यहां से जमुना जी का एक बूंद भी जल आगे बहता नहीं है। यहां पर केवल ये सब दिख रहे हैं ना आपको, ये सब नाले हैं गंदगी के, ये क्या है, दिल्ली का सुअर नाला है, ये नजफगढ़ का नाला है, फिर यहां से ओखला का नाला है, ये सब नालों से केवल मल मूत्र और केमिकल से यहाँ का प्रभाव बनता है, और जब वृंदावन में आता है वो केवल एक मल मूत्र और केमिकल का कॉकटेल है। आपको और भी बताता हूं, हमारे धर्म में ऐसा महान महान कार्य होते हैं कि जमुना जी का जल, वृंदावन, प्रभुपाद जी ने कहा था कि 5,000 मंदिर वृंदावन में, वो सब बड़े बड़े नहीं है, तो लोगों के घरों के अंदर भी उसका गिनती किया गया है, लेकिन 1,000 कम से कम पब्लिक मंदिर है, जैसे बांके बिहारी है, कृष्ण बलराम मंदिर है, जैसे बांके राधा वल्लभ जी है, दामोदर जी है, श्याम सुंदर जी है, हाँ, और टेकड़ी रानी का मंदिर है, और लाला बाबू का मंदिर है, ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर जहां पर भगवान की विग्रहों की पब्लिक रूप में सेवा की जाती है, और रोज के पैमाने पर वहां पर जमुना जी से जल लेकर घड़े में जाकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। श्रीनाथ जी जो गोपाल जी जो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया था, वो जब मुस्लिमों का आतंक हुआ तभी उनको नाथद्वार लेके गए, अब उनके बाल स्वरूप में पुष्टि मार्ग के मंदिर में सेवा हो रही है। 3 सोने के कलश में जमुना जी से वृंदावन से रोज जल जाता था नाथद्वार में, और उस सोने के कलश में जमुना जी के जल से श्रीनाथ जी का अभिषेक किया करते थे। 2.5 साल पहले ही अभिषेक बंद किया गया क्योंकि उनको पता चला कि ये जमुना जल है ही नहीं, ये केवल मलमूत्र है, लोगों का मलमूत्र से भगवान को अभिषेक किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन किया कुछ नहीं, अपना काम बंद कर दिया बस, लेकिन आगे कुछ करना चाहिए, ये कुछ किया नहीं। और आज भी कई विग्रहों को जमुना जी के जल से नहाया जाता है। हमारे अस्थियों को, माताओं के, पिताओं के, पितरों के हम लोग बहाते कहाँ हैं, मलमूत्र में बहाते। हम आचमन किसका करते हैं, मलमूत्र का करते हैं, क्योंकि जमुना जी का 1% पानी गवर्नमेंट जमुना जी के प्रभाव में नहीं भेज रहा है। परदेश में ऐसी स्थिति है, जमुना जी का जो पात्र है, जो आगे हमने यहाँ पर दिखाया आपको, ये आगे दिखाया है, इतना विशाल पात्र है, समुद्र जैसा है, आपको देखकर आश्चर्य होगा। आप जाइए चार धाम की यात्रा कीजिए और जमुनोत्री का दर्शन कीजिए, इतना सुंदर प्रवाह है, इतना सुंदर ध्वनि है उस जल का कि वो ध्वनि को बैठकर आप ध्यान कर सकते हो, भगवान के कृपा पर ध्यान कर सकते हो। इतना सुंदर जल प्रवाह है, उसका ध्वनि है, उसका बाष्प है जो आपको सिंचित करेगा और शीतलता देगा और आध्यात्मिकता अनुभव देगा। आप देखिए जाकर, उतना बड़ा पात्र जो है उससे 100वां पात्र भी विदुष की नदी में नहीं होता है। जैसे हम पढ़ते ना थेम्स नदी, नाइल नदी, इतना बड़ा बड़ा उसका गौरव होता है। इन्होंने कितना बढ़िया मेंटेन किया, उसको राष्ट्र नदी के रूप में घोषित किया गया है, और उससे 100 गुना जिसका पात्र विशाल है, जिसकी लीलाएं हैं, जिसका गौरव है, जिसकी शुद्धता है, जिसका क्या कहें उसके बारे में, अनंत वर्णन कर सकते। ऐसे ही नदियों के बारे में हमारे गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं, और राष्ट्रगीत हम गाते हैं, विंध्य हिमाचल गंगा जमुना उत्कल जल तरंग, क्यों गाते हैं उसको? राष्ट्रगीत बदल देना चाहिए। अगर हमको राष्ट्रगीत में वर्णन किए हुए स्थानों को, नदियों का महत्व नहीं है, तो उसको राष्ट्रगीत को बदल दो, नई कविता लिखो, अभी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गुजरात ऐसा बोलो, जहां पे इंडस्ट्रीज है उसका गौरव करो, ढोंग मत करो। हाँ, तो यहां पर आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमको, मुझे भी शौक लगा कि मैं इतने श्रद्धा से मेरे अच्छे अच्छे भक्तों के पितरों का अस्थि लेकर मैं वहां पर विसर्जन करता हूँ। आज मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर मलमूत्र बह रहा है। कुछ कुछ जल की वर्षा होती है। इस साल में जमुना जी में बाढ़ आई थी, आपको पता होगा, कई लोग गए होंगे बारिश के मौसम में, कितनी बाढ़ आई थी। पता है बाढ़ क्यों आई? क्योंकि जब बारिश वहां पर ऊपर ज्यादा हुई तो वो डैम जो है, जहां पर पानी टर्न करने का जो जगह था, वो भर गया। वो जाम डैम फूट न जाए इसलिए उसने पानी छोड़ दिया बिना प्लानिंग किए हुए, और सब वृंदावन के घरों में फ्लड ला दिया उन्होंने। कितने लोगों को बेघर कर दिया, जमुना किनारे रहने वाले लोगों को। ये हमारा देश की स्थिति है। तो प्रश्न ये बताऊंगा आगे मैं आपको, चाइना, ये जापान का रेडियो टेलीविजन का फिल्म नहीं आएगा यहाँ पर अभी, इसमें जमुना जी के विश्राम घाट के अंदर कुछ हजारों मछलियां मरकर अचानक तैरने लगी, इसका न्यूज जापान के टीवी पर आया। उसका न्यूज सुनकर भारत के न्यूज़पेपर में आया, लेकिन भारत ने उसके लिए कुछ नहीं किया। क्यों जल की मछली मरकर पैदा हो गई उधर? क्योंकि केमिकल्स पॉइजन इतने बढ़ गए हैं कि मछली जो भी थोड़ी बहुत है वो भी जी सकती नहीं है, ऐसे मुर्दा मुर्दा करके आ रही है। वो जल के हम पी सकते हैं क्या? आचमन कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते। जापान गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ दिए इस नदी को शुद्ध करने के लिए, 1 रुपया भी लगाया नहीं गया, सब नेता लोग खा गए उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी बार 300 करोड़ 500 करोड़ दिया है जमुना जी के उद्धार करने के लिए, 1 रुपया भी लगाया नहीं गया, सब जेब नेताओं के जेब में गए। अभी मायावती ने 1200 करोड़ दिया है, लेकिन पता नहीं कितना 100 रुपया उसमें लगाएंगे वो लोग, कुछ भी नहीं हो रहा है। और श्री वृंदावन धाम में जहां पर जमुना जी का इतना बड़ा गौरव है, उसके अंदर इतना बड़ा हाथ मेरा है, उसका व्यास जो है डायमीटर उतना बड़ा सुवेद जो है वो चीरघाट के सामने ही प्रवेश कर रहा है, हमारे नेत्रों के सामने। उसके आगे केशी घाट है जहां पर हम लोग स्नान करते, पूरा मलमूत्र जो है प्योर मलमूत्र अनट्रीटेड। और दिल्ली में जितना मलमूत्र निकलता है, मैंने आपको बताया 3270 मिलियन लीटर्स MLD बोलते हैं उसको, मतलब 32 करोड़ सुवेज निकलता है। और कुछ वहां पर सैकड़ों सुवेज के प्लांट है जो सुवेज को ट्रीट करते हैं ना, थोड़ा ट्रीटमेंट देकर उसको खेतों में वगैरह भेजते हैं। तो कहते हैं कि 5% प्लांट भी काम नहीं कर रहे हैं, वो मलमूत्र को ट्रीट ही नहीं कर सकते। और मिनिमम 12 करोड़ लीटर मलमूत्र बिना ट्रीटमेंट का ऐसे ही पानी में प्रवेश कर रहा है आज के तारीख में। अब सोचिए दिन के अंदर 12 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, कितने साल बीत रहे हैं और कितने दिन जा रहे हैं और कितने मलमूत्र का उसमें प्रवेश हो रहा है। गवर्नमेंट उसको सुवेज को प्लांट को रिपेयर भी नहीं कर रही है और क्लेम क्या करती है कि 65% सुवेज प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में 5% भी काम नहीं कर रहे हैं। और श्री वृंदावन धाम में मथुरा भूमि में जहां पर उसका महत्व है, वहां पर भी गवर्नमेंट सारा वृंदावन का यात्रियों का ब्रजवासियों का मलमूत्र जो है वो जमुना में सबके आंखों के सामने छोड़ दिए, और फिर भी श्रद्धा लोगों की इतनी कि उसके आगे भी जाके आंच बंद करते, लोग बोट में बैठकर अस्थियों को डालते। हाँ, तो ये आज की स्थिति है, देख सकते हैं आप। ये क्यों हुआ? कि हम लोग ने कभी उसका ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग खाली मन में रखते हैं श्रद्धा हमारी। हाँ, श्रद्धा जो होती है वो कभी कभी मन के बाहर भी कृति में आनी चाहिए। अगर वास्तविक में समझो हमारी हमारी माँ है समझो, और हमारी माँ को कोई जहर दे रहा है, हमारी माँ को कोई मलमूत्र पिलाया जा रहा है, तो हम कहेंगे नहीं मैं ऑफिस में जरा बिजी हूं, मैं भी कल आऊंगा उनको मिलने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैं बहुत जरा बिजी हूं, मैं भी इतना बिजनेस है, इतना परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मदर को आप जरा एडमिट कर दो और मैं पैसा भेज दूंगा यहां से। नहीं, आपकी माँ मर रही है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, उसको केमिकल पॉइजनिंग, अभी उसका हृदय और यकृत बंद पड़ने वाला है, अरे मैं कल आऊंगा और एक लेटर भेज दूंगा कि डॉक्टर साहब डोंट वरी, जितना पैसा ले लो मेरी माँ को ठीक कर दो, ऐसा हम लोग कुछ कर रहे हैं। ये गंगा जमुना का जल जो है वो दूध की तरह है, जैसे माँ का दूध होता है वैसे दूध की तरह है, और इतना गौरव होने पर भी हम लोग उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, हम हरे कृष्ण के डिवोटी हैं, हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम पुष्टि मार्गीय हैं, हम निम्बार्की हैं, हम विष्णु संप्रदाय के भक्त हैं, और जमुना जी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हम उसका अष्टकम गाते हैं, मंदिर में श्रवण करते हैं, जमुना जी के आविर्भाव के दिन में बहुत उत्सव मनाते हैं, जमुना जी के डीटी को अभिषेक करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जमुना जी वहां बह रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, दर्शन करते हैं और ये हमारा काम नहीं छोड़ के चले जाते। हम कौन है, इतने तुच्छ हैं, छोटे से भक्त हैं, हम क्या करेंगे, हमारा क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा करते हैं। ये बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारा चीज बता दिया आपको मैंने, ये यहाँ पर रिकॉर्ड है, देखिए इतना लीटर पानी जमुना जी में रोज मलमूत्र का प्रवेश कर रहा है। एक और बात बताऊं आपको कि जो पानी पीने लायक होता है उसके अंदर एक गवर्नमेंट का और एक साइंटिफिक शास्त्रीय एक कैलकुलेशन है। कोलीफॉर्म नाम के जंतु होते हैं, मतलब वो अलग प्रकार के, बहुत सारे उसमें मेडिकल नॉलेज है, अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, उनका नंबर जब 100 ml के अंदर 5000 तक होता है, बहुत अणुमात्र होते जंतु, उनका नंबर जब 5000 तक होता है तब तक हम लोग उसको शरीर की प्रतिकार शक्ति उसको संभाल सकती है, उसको मार सकती है और हम उसको पी सकते हैं, मतलब शरीर में इतनी शक्ति है कि उसको नष्ट कर सकते हैं। जब 5000 नंबर के ऊपर 100 ml वाटर में जब ये बढ़ता है उसका नंबर, तो वो रोग देता है। आपको पता है जमुना जी के जल में दिल्ली में कितना अंक है और श्री वृंदावन में जो तथा कथित जमुना का जल है उसके अंदर कितना अंक है? हाँ, कुछ 35,000 से ऊपर कोलीफॉर्म नंबर जो है 100 ml के अंदर, ये कैलकुलेशन दिल्ली के जल का है, क्योंकि इतना मलमूत्र वहां पर डाल रहे हैं। श्री वृंदावन धाम में जमुना जी का जल जो आता है उसके अंदर 97 करोड़ बैक्टीरिया है 100 ml के अंदर, इसलिए उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जागतिक आरोग्य संगठना ने मृत नदी घोषित किया है। वो लोग खाली रिपोर्ट देते हैं, वो कुछ करते नहीं, क्योंकि काम तुम्हारा है करने का। तो रिपोर्ट क्या कहता है, मृत नदी घोषित किया गया, उसको क्लास ई वाटर है उसका, ये हमारा पवित्र स्थान है जिसका हम वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। अरे सऊदी अरब में मैं रहा था, उस राजा का नाम क्या है, कस्टोडियन ऑफ टू होली मॉस्क, राजा का पदवी यह है कि दो पवित्र मस्जिदों का जो रक्षण करता है वो सऊदी अरब का राजा है। आप जाके देखिए, हमको तो हिंदुओं को प्रवेश नहीं, मैंने वहां पर फोटोग्राफ देखे रहते हुए, इतना स्वर्ग की तरह बना के रखा है उसको, क्योंकि उनका धर्म का एक ही धरोहर है और कुछ उसके धर्म में है ही नहीं, खाली दो मक्का और मदीना है बस, उसके ऊपर पूरा उनका फिलोसॉफी है। यीशु ख्रिस्त के धर्म में केवल यीशु ख्रिस्त का जो बलिदान है क्रॉस पर वही उनकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो प्रचार करते रहते हैं, यीशु ख्रिस्त ने आपके लिए जान दिया। लेकिन हमारे धर्म के अंदर, हमारे वेदों के अंदर इतनी अनंत लीलाएं भगवान की, अनंत नदियां हैं, अनंत भगवान के कार्य, अनंत प्रकार के अवतार हैं, और कितनी प्रचंड शिक्षाएं हैं, कितनी प्रकार के वेद और उपनिषद और पुराण है हमारे पास। हाँ, एक एक चीज को कैपिटलाइज करेंगे तो हमारा धर्म जो है पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हो सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है। लेकिन हम लोग बहुत शांत है, हाँ, और निष्क्रिय है हम लोग, हमारे अंदर वो चिंगारी जलती नहीं है, आग उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, हमारा दिल जलता नहीं है सुनकर अरे कि हमारी नदी में मलमूत्र छोड़ा जा रहा है। हम मलमूत्र का आचमन करते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय बोलकर। क्यों हमारा दिल नहीं जलता ये सब सुनकर? तो ये सब जो है थोड़ा बहुत दर्द उत्पन्न करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बुलाया है। ये सब जो डेटा है हमने ऑथेंटिक सोर्स से लाया है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण मंत्रालय से ये फिगर लाए हैं यहाँ पर। ये सेंट्रल बोर्ड है पोल्यूशन का कंट्रोल का, उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन निकाला है, ये आज नहीं है कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट का रेजोल्यूशन है कि कोई भी नदी के अंदर इंडस्ट्री का वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है कई साल पहले कि जमुना जी के अंदर मलमूत्र प्रवाह न करने के लिए कुछ ढाई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने बताया है, जिसमें जमुना जी को पैरेलल एक नाला बनाना चाहिए इंजीनियरिंग के रूप से, और उसमें सारे जितने भी नाले हैं नजफगढ़ के और हाथीनी ब्रिज के और ओखला के जितने भी मलमूत्र है वो पैरेलल ही जाकर उसको अलग दिशा में घुमाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये जो आंदोलन है ये मान मंदिर सेवा संस्थान करके जगह है, मान मंदिर यानी कि बरसाने के अंदर, बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं, कोई बड़े अच्छे कोई धनी लोग भी नहीं है, बहुत सिंपल ब्रजवासी हैं वो लोग, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, आज हम लोग भी बोल रहे हैं उनकी कृपा से बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ जीवित थे 25 साल 50 साल तक जीवित हैं, क्या फायदा है उसका, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर वो चिंगारी जलाई है कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, एक छोटे से ग्रुप ने जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन उनके अंदर भगवान राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम है, उन्होंने इस संस्थान को बनाकर उसको वो त्रिवेणी संगम से उन्होंने पदयात्रा आरंभ की। वो कहते हैं कि त्रिवेणी संगम है ही नहीं क्योंकि वहां जमुना जी पहुंचते नहीं, वो त्रिवेणी संगम कैसे हो सकता है, वृंदावन धाम में जमुना जी है ही नहीं, खाली खाली नदी का पात्र है मनमूत्र का है, पहुंचती नहीं वहां पर वो। उन्होंने दिल्ली से वृंदावन और वृंदावन से आगे त्रिवेणी संगम है, तो उन्होंने उल्टा प्रवाह शुरू किया चलने का जमुना किनारे किनारे किनारे, और उन्होंने वो अभियान पदयात्रा निकाल के फिर वो वृंदावन में आए, वहां से वो दिल्ली चले गए और जंतर मंतर में 15 अप्रैल को उन्होंने बहुत बड़ा धरना लगाया, 25,000 लोगों को वहां इकट्ठा किया, उसके अंदर भारतीय किसान यूनियन, उसके अंदर पुष्टि मार्गी निम्बार्की विष्णु संप्रदाय हरे कृष्ण संप्रदाय और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सभी लोगों को उन्होंने, स्वयंसेवी संस्थाओं को उन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि इशू जो है वो धर्म का नहीं है, इशू राष्ट्रीय इशू है, राष्ट्र नदी का इशू है, इसमें कोई मैं धर्म मेरा हिंदू है तुम्हारा मुस्लिम है उसका क्रिश्चियन है ऐसा कोई इसमें जरूरत नहीं है, राष्ट्र नदी है वो। और आपको शायद यकीन नहीं होगा कि उसके किनारे में बहुत सारे गांव हैं जहां पर ये पदयात्रा चल रही थी, कई मुस्लिम गांव हैं, वहां मुस्लिम लोगों ने इन लोगों को घर में प्रसाद दिलाया, उनका स्वागत किया, उनको मालाएं पहनाई और एक अद्भुत वादा किया उन्होंने, सुनकर आश्चर्य होगा आपको, मुसलमानों में जब शादी होती है तो 3 बार कबूल होता है ना, कबूल है पत्नी को स्वीकार करने के लिए 3 बार प्रिस्ट के सामने मुल्ला के सामने वादा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज से हमारे गांव, अनेक गांवों ने वह शब्द वचन लिया है कि हमारे गांव शादी में 4 कबूल करेंगे, 3 कबूल पत्नी के लिए होंगे मुल्ला के सामने, 1 कबूल जमुना जी के लिए होगा कि मैं जमुना जी की रक्षा भी करूंगा, ये मुसलमानों ने वादा किया है। और एक साहब सिंह गुरुद्वारा है दिल्ली में, जब इनकी पदयात्रा दिल्ली पहुंची तो वो साहब सिंह गुरुद्वारा ने ऐलान किया कि जितने भी लोग यहां पर जितने भी बार जमुना जी के लिए आंदोलन करने के लिए आएंगे 1,00,000 भी होंगे तो हमारे लंगर में हम उनको भोजन कराएंगे आपके अनुसार कांदा लहसुन के बगैर, भगवान को ऑफर करके उनको कितने भी बार कितने भी दिन तक आप उनको खिलाएंगे। तो ऐसा नहीं कि खाली हिंदू लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल कॉज है। भारतीय किसान यूनियन इसमें क्यों ज्वाइन हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैं आपको बताता हूं, दशम स्कंद में 20वें अध्याय में आप देख सकते हैं, भगवान कहते हैं 20वें अध्याय में कि जब किसान संतुष्ट होता है, जब किसान के गोदाम धान्य से भरे होते हैं तो विश्व का कल्याण होता है। और रामायण में लिखा गया है कि किसान की तुलना संत से की गई है, संत क्या करता है, हृदय से हमारे पाप वृत्तियों को निकालकर शुद्ध भक्ति को परवरिश करता है। किसान भी जमीन के अंदर से जो पाप जैसे कि विष वैली है विष को निकालकर अच्छे धान को उपज करता है और पूरे दुनिया को पालन करता है कृषि वाणिज्य के रूप में। तो किसान यूनियन को ज्वाइन हो गया क्योंकि उसके आगे जल ही नहीं मिल रहा है, ना हरियाणा के आगे मिल रहा है ना ब्रजभूमि में मिल रहा है, कोई जल का प्रवाह ही नहीं हो रहा है तो खेती कैसे होगी, वहां वर्षा नहीं होती है, नदी के जल पे ही सब लोग जीवन चलाते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन उसमें पूरी तरह शामिल हो गया है, उनके एक बड़े अध्यक्ष हैं, रो रो कर भाषण दिया है कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, बोलते हैं वो 50 साल तक मैंने काम किया है इस पॉलिटिकल फील्ड में, आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ का मृत्यु हो रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं जंतर मंतर जाऊंगा और वहां पर भूख हड़ताल करूंगा और वापस लौट के नहीं आऊंगा जब तक जमुना जी का उद्धार नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट पानी नहीं छोड़ते तो मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा। तो ऐसी कई बातें हैं, तो उन्होंने ये इसको आंदोलन को आरंभ किया है। और ये वो हमसे क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर इतना अभी उतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं कि वो जागरूकता चाहते हैं। अरे नॉलेज नहीं हो तो दर्द कैसे उठेगा, प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। थोड़ा सा नॉलेज हमने देने का प्रयास किया कि जमुना जी का महात्म्य क्या है, उसका अनंत महात्म्य है। अगर एक अष्टक को लेकर बैठेंगे तो घंटों घंटों उसका वर्णन करना पड़ेगा कि क्या क्या वर्णन दिया गया उसके। एनीवे सब बातें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर कुछ भावना उत्पन्न हो। हमें करना क्या है अभी, आपके सबके मन में अभी इच्छा उत्पन्न हो गई होगी कि कुछ करना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले आप प्रार्थना आरंभ करो, जहां पर भी आप बैठे हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, इसराइल में हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, जापान में हो, जहां जहां भी जीव प्रामाणिकता से हृदय से प्रार्थना करता है उसका परिणाम होता है और वो अंतरों को पार करके भौतिक बंधनों को पार कर जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाता है। तो आप सबसे पहले प्रार्थना कीजिए कि हमारी जमुना जी, हमारी गंगा जी जो है उसको बनाए रखें ताकि हमारे आगे की पीढ़ी उसका दर्शन कर सके, उसका गौरव सुन सके, उसमें स्नान कर सके। और सबसे पहले जंतर मंतर में जब हुआ वहां पर उन्होंने हमको विनती किया, वो लोग इतने श्रद्धालु और इतने डेडिकेटेड है इस कॉज के लिए, वो कहीं भी जाने को तैयार है। हाँ आज भी राधा राजबिहारी मंदिर में रैली है जमुना जी के लिए, राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से चौपाटी में रैली थी, गिरगांव चौपाटी में, तभी भी वो लोग दिल्ली से फ्लाइट से आए और उन्होंने वहां पर 2,500 लोगों के सामने भाषण दिया और लोगों को प्रेरित किया आंदोलन के लिए। उसके रिपोर्टर्स लोगों ने फोटो लिया, पेपर में उसका आया। आज दोपहर को 4 बजे जुहू मंदिर की तरफ से विशाल रैली का आयोजन किया गया है, सर्वधर्मीय रैली, राष्ट्रीय रैली का आयोजन किया गया है। उसके अंदर हेमा मालिनी अपने 2 लड़कियों को लेकर सहभागी होने वाली है, पंडित जसराज उसमें सब भाग लेने वाले हैं और कई स्टार और सेलिब्रिटीज का नाम उसके अंदर है जो वहां पे आने वाले हैं। वो जो विनती कर रहे हैं कि जब हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे भक्त तो उसमें आने ही चाहिए। अभी हमने कल परसों मीटिंग किया हम अपने मंदिर में यहाँ पर हॉल में, उसमें लोकल कॉरपोरेटर, उसमें सिख धर्म के, उसमें पुष्टि मार्ग धर्म के, स्वामी नारायण के सभी प्रतिनिधि वहां पर आए थे। हाँ और तुरंत उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के अंदर 10 जगह पर हम लोग ये प्रेजेंटेशन करेंगे जो हमने बताया यहाँ पर। तो हमने बहुत भक्तिपूर्ण उसको बताया, बाहर टेक्निकल बताएंगे, लेकिन 10 जगह पर उन्होंने आयोजित किया गया है। उनके शाम के जो यहाँ पूजा होती है साई बाबा के मंदिर में होती है या गुरुद्वारे में होती है, स्वामीनारायण के मंदिर में होती है, पुष्टि नारायण के हवेली में होती है, उन्होंने अपना अपना ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर होगा और वो सब प्रकार के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें कोई आतंक और नारेबाजी और पॉलिटिकल प्रदर्शन नहीं करना है हमको, हम लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, जब जंतर मंतर में उन्होंने आंदोलन किया, उनका आंदोलन मतलब क्या था, अखंड कीर्तन था, 24 आवर्स कीर्तन उन्होंने कई दिन तक किया। सब रिपोर्टर वहां पर आए, ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं, हाँ जो कीर्तन हो रहा है भगवान के नाम का। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग भी कीर्तन करते हुए जाएंगे, हम भगवान को पुकारेंगे। हमारा शक्ति क्या है, भगवान का नाम हमारी शक्ति है। तव शुभ नामे जागे, इसका मतलब क्या है कि भारतवर्ष में भगवान का नाम जगेगा और वहां से पूरे विश्व में प्रकाशित होगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है, और तव शुभ आशीष मांगे, मतलब जब नाम का उद्धार होगा, नाम का उच्चारण होगा, नाम का प्रचार होगा, नाम का अग्नि प्रज्वलित होगा सब जगह पर, तब आशीष प्राप्त होगा भगवान का। तो हम लोग का आश्रय वही है, हमारे बरसाने आय कैंप के अंदर भी हम लोग भगवान का नाम का कीर्तन अखंड करते रहते हैं। उसी के आधार पर वहां पर ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग उसी के आधार पर जाएंगे, सात्विक रूप में जाएंगे। कोई हमको पैशन पॉलिटिकल कुछ गेन नहीं करना है इसके अंदर, हमको खाली इतनी कोशिश करनी है। रिपोर्टर्स को हम लोग लेके आएंगे, यहाँ पर गुरुवार को मंदिर में पत्रकार परिषद होने वाली है, कुछ 50 मेरा रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके जो संपादक और जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर आएंगे, उनको हम लोग भोजन कराएंगे और पूरा दिखाएंगे कि कॉज क्या है। फिर वो अपने पत्रकार पत्रों में लिखेंगे या टीवी पर दिखाएंगे तो गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ही होगी, क्योंकि जब मीडिया में आता है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ये इतने गरीब और सिंपल लोग हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो सोनिया गांधी का मुलाकात किया इस बात पर, उन्होंने उनको पॉलिटिकल आंसर दे दिया, नहीं नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे, एक पॉलिटिकल आंसर दे दिया। तो सलमान खुर्शीद जो है, हाँ हाँ, तो उन्होंने फिर अभी उसके बाद सलमान खुर्शीद जो केंद्रीय जल संपदा मंत्री है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, जयराम रमेश जो पर्यावरण मंत्री है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और अभी राधा गोपीनाथ मंदिर के माध्यम से वो राष्ट्रपति और पंतप्रधान मनमोहन सिंह को मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी उसमें यश आएगा। और उन्होंने 8 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें 3 लोग बाण मंदिर सेवा संस्थान के हैं और 5 लोग गवर्नमेंट की तरफ से हैं। वो जमुना जी का जो प्रवाह है जहां से मलमूत्र और केमिकल जा रहे हैं उसका स्टडी करेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे और उसको अमल करेंगे। इस तरह से कार्य हो रहे हैं, हमको मिनिस्टर को मिलने की जरूरत नहीं है, वो कुछ लोग कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, सबसे पहले प्रार्थना करो, हर हो सके तो एक माला 10 बार हरे कृष्ण मंत्र रोज जमुना जी के लिए आप पुकार सकते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो, भगवान हमारे धरोहर को बचाओ, क्योंकि करने वाला तो आप ही हो। लोग कहेंगे कि नहीं कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में तो नदियां नष्ट होंगी, शास्त्र में लिखा है, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। उसका उत्तर क्या है पता है? भगवान ने ऐलान किया था कि हम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठना चाहिए, उठना नहीं चाहिए ना। भगवान ने ऐलान किया था कि मैं आऊंगा निशस्त्र आऊंगा, मेरी नारायणी सेना एक तरफ है और मैं निशस्त्र एक तरफ हूं। तो कौरवों ने नारायणी सेना को ले लिया, एक अक्षौहिणी, और अर्जुन ने नियत्य भगवान को ले लिया। तो एक दिन 9 दिन के युद्ध के बाद भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि 5 पांडवों का जिंदगी हराम कर दूंगा और भगवान को शस्त्र उठाने में मजबूर कर दूंगा। तो भगवान ने शस्त्र उठाया ना उसके बाद में, भगवान ने कुछ ऐलान किया था। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही शास्त्र है। उस शास्त्र में ये भी लिखा है कि आगे जाकर कलयुग में नदियां नष्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर भक्त लोग पुकारेंगे, भक्त लोग याचना करेंगे, हृदय से रोएंगे, छाती पीट कर रोएंगे, तो भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर इसको बचाएंगे आगे कुछ सैकड़ों साल तक। हरे कृष्ण। हर एक नियम का अपवाद होता है, एवरी रूल इज एक्सेप्शन। तो हम लोग उसी बलबूते पर, भगवान ने की हुई लीला के बलबूते पर ही विश्वास रखते हैं कि यस, कलयुग के प्रभाव से नदियां धाम नष्ट होंगे, लेकिन हम भगवान को पुकारेंगे और कम से कम कलयुग के स्वर्ण युग तक चैतन्य महाप्रभु के ऐलान के प्रकार से 10,000 साल तक कम से कम इसका अस्तित्व रहे, श्री वृंदावन रहे, यमुना रहे, गोवर्धन रहे। क्योंकि बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा, उस समय जब गोवर्धन यमुना नष्ट हो जाएंगी, तब घोर कलयुग का आरंभ होगा। तो हम लोग करुणावश उस घोर कलयुग के आगमन को पोस्टपोन करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे वो तो बहुत दूर है, अभी 9,565 साल बाकी है उसके लिए, 425 साल बाकी है, 9,425 साल अभी बाकी है घोर कलयुग के आने के लिए। बीच में बहुत साल है, बीच में बहुत पीढ़ियां हमारे जन्म लेंगी, हम चाहते हैं कम से कम उनको नजर पड़े। अगर इस गति से यमुना जी का भयंकर उद्वंस होता रहेगा तो कुछ 50 साल के अंदर यमुना जी खत्म हो जाएगी पूरी। हाँ देखिए, मैं आपको एक लास्ट चित्रपट दिखाता हूं दोबारा एक बार। ये चित्रपट जो है, एक यूएस से एक कमेटी आई भारत में, गवर्नमेंट ने उनको बुलाया कि हमारे नदियों को आप शुद्ध करने के लिए आओ। बोला चलो, कमेटी दर्शन कर रही है, उनको यहां पर लाया गया। तो उन्होंने बोला कि नदी है क्या, ये तो गटर है। नहीं नहीं, हमारी नदी है, ये हमारा नदी है। क्योंकि उनकी एकदम तुच्छ नदियों को इतना बड़ा संभालते हो, तो इनको पहचान नहीं सके। ये दृश्य जो है हमारे बॉम्बे में धारावी में दिखाई पड़ता है, ये आज दृश्य हमारे ताजमहल के पीछे जमुना जी का दृश्य ये है। अनंत किलो प्लास्टिक हजारों रोज पहुंचता है उसके अंदर, मलमूत्र पहुंचता है। तो इसकी जागरूकता के लिए हमारे सर पे, हमको आज के दिन अगर समय है तो आपको जुहू मंदिर 4 बजे पहुंचना है। यहां से 3 बसों का इंतजाम किया गया है, आपको केवल जाना है, संडे का दिन है आज। हाँ, और अगले संडे, ये आपके लिए विशेष हमारी विनती है, अगले संडे 8 मई को मीरा रोड मंदिर से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल और राधा गिरधारी मंदिर की तरफ से यहाँ पर रैली है। 4 बजे यहाँ पर पहुंचना है और यहाँ से हरिनाम कीर्तन करते हुए, बड़े प्रेम से भगवान को पुकारते हुए हम लोग स्टेशन तक जाएंगे। वहां पर सिख धर्म के लोग, पुष्टि मार्गी, स्वामी नारायण और बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं, सब प्रकार के लोग एकत्र होंगे, कोई धर्म का भेद नहीं होगा उसके अंदर। आगे जाएंगे, एक जगह रुकेंगे, कुछ लोग भाषण करेंगे, कुछ लोगों को, सुनने वालों को प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। वहां मीडिया के लोग आएंगे, हमारा इंटरव्यू लेंगे और वो शायद पेपर में और टीवी में दिखाएंगे, कुछ असर होगा। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक जगह हुआ, 2 जगह हुआ, अहमदाबाद में होगा, गुजरात में होगा और हरियाणा में हो रहा है और कई जगह हो रहा है। जब सब जगह होगा तो लोगों को लगेगा, गवर्नमेंट को, कि लोगों का इसमें रुचि है, ये जनहित की बात है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति ने जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी ऐसे पहले ही इसके लिए, और इनका आंदोलन और उसकी डेट साथ में आ गई। और वो वही कह रहे हैं, आपको नया कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले तय किया खाली उसको करना है बस। जमुना जी के अंदर अगर 5% भी जल आप छोड़ेंगे वृंदावन तक, और केमिकल और मलमूत्र को बंद कर देंगे, तो जमुना जी में अपने आप मछली कछुआ उत्पन्न होंगे, वो अपने आप जल को शुद्ध रखेंगे और मलमूत्र को रोकेंगे, तो जमुना जी का जल पीने लायक जो है क्लास ए अपने आप पैदा होगा। आपको कुछ करना नहीं है, हमारी तरफ से जो गंदगी फैल रही है उसको बंद करो, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। और इंडस्ट्री की तरफ से पैसा खाकर, जो करोड़ों रुपए खाकर जो केमिकल्स डाल रहे हैं उसको कायदे से बंद करो। थोड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बड़े बड़े गबर माफिया लोग उसमें काम करते हैं। वो बंद करो अपनी शक्ति से और मलमूत्र को डाइवर्ट करो और केवल जल को दिल्ली के बैराज से भेज दो, खाली बस 5-10% जल भेज दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब भगवान पर्यावरण अपने आप उसको संभालेगा। ठीक है, ये हमारे आपको विनती है। और इस सभी कथा समाप्त होने के पश्चात आपको हम एक 10-15 मिनट का फिल्म दिखाएंगे। वहां पर एक संत हैं जिनकी प्रेरणा से ये काम शुरू हुआ है, उनका एक छोटा सा भाषण है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से सुनिए और हमारी हाथ जोड़ के आपको विनती है कि आप लोग जो अगर भगवान के भक्त अपने आप को मानते हो तो कृपा करके इसके लिए एक आंसू बहाओ, कम से कम एक प्रार्थना भगवान को अर्पण करो, एक मंत्र बोलो भगवान के लिए और हमारी रैली में आप सहभाग ले लो। बोलो श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुना देवी की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। उसको बंद करो, रिकॉर्डिंग को बंद करो। Thank you.